नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पाटुकर आज हमारे साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर एक विशेष बातचीत के लिए उपस्थित है। पुरोगामी विचारधाराओं के पर अपना एक अभियान चलाने वाले वरिष्ठ पत्रकार एवं तर्कशील संस्थान के सचिव पीकेश गुरुवे जी। नमस्कार गुरुवे जी।
नमस्कार पाटुकर जी।
आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है और आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस ही क्यों मनाया जाता है।
देखिएगा पाटुकर जी, विवेकानंद जी को जो है युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इस देश का युवा ही आने वाले समय में इस देश का कर्णधार होता है। नई चेतना, नए विचार और उद्देश्यों को लेकर हमेशा जागरूक रहने वाला युवा ही, और उसे ही हम ये अपेक्षा लगा सकते हैं कि इस देश के भविष्य को वो किस तरह निर्माण करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम जिन विषयों पर बात करना चाहे, जिस थीम को लेकर हम काम करना चाहे, तो हमारी सारी अपेक्षा युवाओं पर होती है। और चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ने खास करके जो काम किया है वो युवाओं को प्रेरित करने का ही काम किया है। उनका एक वाक्य हमेशा हम लोग कहते रहते हैं कि उन्होंने युवाओं को कहा था कि आप उठें और तब तक चलते रहें जब तक आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर लेते। उठो, जागो और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करो। तो युवाओं को उठकर जागरूक होने की बात उन्होंने कही थी, और इसलिए इस देश में 12 जनवरी को जो विवेकानंद जी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम इस देश के जो कर्णधार है, जो युवा वर्ग है, इनसे हम एक नई संकल्पना लेकर हम आगे बढ़े और स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम आगे बढ़ाते रहें, समाज में उनके विचारों को स्थापित करते रहें।
जैसा कि आज संपूर्ण देश में युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में युवाओं की दशा और दिशा क्या है।
देखिए पाटुकर जी, ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिए भी कि वर्तमान जो स्थिति हमारे सामने है, इस वर्तमान परिस्थिति के लिए आपका एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि युवाओं की वर्तमान में दशा क्या है और दिशा क्या होनी चाहिए। तो वर्तमान में युवा जो है, इस देश का युवा भटका हुआ है। युवाओं को विविध स्तर पर मार्गदर्शन तो किया जा रहा है, लेकिन उन युवाओं को जो सकारात्मक विचारधारा वाला जो मार्गदर्शन है, हमारे इतिहास पर आधारित जो मार्गदर्शन है, युवाओं के कैरियर को स्थापित करने वाला जो मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन कहीं ना कहीं उनसे काफी दूर है। आज का युवा भटका हुआ है। आज का युवा आज अपनी लाइफ की, अपनी भविष्य की दिशा तय नहीं कर पा रहा है कि उसे जाना कहाँ है। इसके पीछे कारण तो अनेक है कि युवा भटका हुआ क्यों है, और मेरा ऐसा मानना है कि उसका पहला कारण तो मैं आज के युग में सोशल मीडिया को मैं इसका एक पहला कारण मानता हूँ कि जिस तरह सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं द्वारा किया जा रहा है, युवा जितना उसमें सोशल मीडिया में जितना रममान हो जाता है या उसमें अधिकतम अपना समय देता है, और सोशल मीडिया पर जो बातें आ रही है उसके आधार पर वो अपना फ्यूचर तय कर रहा है। इसलिए सबसे बड़ा यदि कोई कारण होगा तो वह है सोशल मीडिया। मेरा अपना मानना है, जब तक युवा इस सोशल मीडिया से दूर नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया जितना अच्छा है लेकिन उसका उपयोग ही उतना बुरी तरीके से आज के वर्तमान युग में हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया पे और चलते हुए वो निराशावाद की ओर भी जा रहा है, नकारात्मक विचारों की ओर भी जा रहा है, नकारात्मक दृष्टिकोण भी उस उसमें विकसित हो रहा है। और यही कारण है कि आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, वो अपनी दिशा नहीं तय कर पा रहा है। और यदि एक भटका हुआ युवक जो है वो भविष्य तय नहीं कर सकता, भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए आज जरूरी है कि हम युवाओं को एक सकारात्मक विचारों के साथ में जुड़े, हम युवाओं को उनके कैरियर के साथ में जुड़े। और इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हमारी इस देश की जो पुरोगामी विचारधारा है, संत परंपराएं हैं, हमारे यहाँ के समाज सुधारकों का इतिहास है, हमारे यहाँ जो पुरोगामी विचारधारा के जो लोग हुए उनके जो विचार है, साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी युवाओं में विकसित करने की आज की आवश्यकता है। जब तक आप युवाओं को सकारात्मक विचारों से आप उनको प्रेरित नहीं करेंगे, आप उनको अपने इतिहास से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक युवा का जो लक्ष्य है वो तय नहीं हो पाएगा। हम आधुनिकता की बात करते हैं, 21वीं सदी की और की बात करते हैं, लेकिन हम जितनी आधुनिकता की बात करते हैं उसी आधुनिकता के नाम पर आज का युवा भटका हुआ है। इसलिए आधुनिकता की परिभाषा क्या है इससे उसे अवगत कराने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर जो काम युवाओं के लिए होना चाहिए वो काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो काम होना चाहिए युवाओं के लिए वो कहीं ना कहीं एक निश्चित दायरे में जाकर सिमट कर रह जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम युवाओं का साहित्य से भी दूर करके जा रहे हैं। आज के युवाओं का साहित्य क्या हो गया, तो वो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो उसको मिल रहा है, जबकि सोशल मीडिया और इंटरनेट पे उसको कहीं कभी भी उसकी वास्तविक बातें उसको नहीं मिल पाएगी, उसको वो नहीं जान पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम युवाओं के मार्गदर्शन के लिए हम ग्रास रूट पे काम करें, हम जमीनी स्तर पे काम करें और उन विषयों को युवाओं से जोड़े जो उनके भविष्य को निर्माण कर सकता है।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर शासन की विभिन्न योजनाएं चल रही है, तो विविध संगठन बनी हुई है, शासकीय ऐसे कुछ संगठन भी है जैसे नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद और योजना, यह जो संगठन है शासन अपनी स्तर पर चलाता है और युवाओं को एक नई प्रेरणा देने के लिए भी लगवाता है। और अभी वर्तमान में युवा दिवस पर युवा सप्ताह का भी आयोजन नेहरू केंद्र द्वारा किया जाता है। युवा सप्ताह के अंतर्गत जो होने वाली गतिविधियां है इस संबंध में आप क्या कहना चाहूंगे?
देखिए पातुरकर जी, प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएं हैं वो अपने जगह पे सही है। प्रश्न ये उठता है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह हम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है, योजनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन उनका क्रियान्वयन किस ढंग से होता है। शासकीय स्तर पर चलने वाली योजनाओं के मामले में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि शासकीय स्तर पर आप किसी भी योजना को लेकर जाइए, उसके और लोगों का देखने का दृष्टिकोण कुछ और बदल जाता है। कुछ ऐसा ही राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर युवाओं से जुड़ी चलने वाली योजनाओं का भी हश्र यही है। कुछ गिने चुने संगठन ही हैं कि जो उन योजनाओं के उद्देश्यों के अनुरूप काम कर रहे हैं, ये मात्र उंगली पर गिनने लायक लोग हैं। और यदि उन योजनाओं को एक बेहतर दृष्टिकोण से संचालन करने वाले जो लोग हैं वो भी काफी कम है। इससे होता क्या है कि इन योजनाओं में अधिकतर खाना पूर्ति होती है, ये मैंने कई बार देखा है कि विशेष आयोजन है या विशेष दिन है या कोई विशेष अवसर है, उस अवसर पर हम आयोजन करो, आयोजन करने के बाद में उसकी पूर्णता हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, अखबारों में खबरें आती है, सोशल मीडिया पे चलती है, लेकिन युवाओं को उसका कितना आउटपुट मिला कभी इसकी समीक्षा नहीं होती है। और युवाओं को कितना आउटपुट मिला इसकी समीक्षा इस देश में कुछ स्वयंसेवी संगठन है, वो जब युवाओं पे काम करते हैं तो काम करने के दौरान वो उसका आउटपुट कितना मिला है, इसका लाभ युवाओं तक कितना पहुंचा है, इसकी समीक्षा करते हैं। ये शासन स्तर पे चलने वाली जो योजना, इनकी भी समीक्षा होनी चाहिए और इसका भी एक अपन ने देखना चाहिए कि इन योजनाओं के कारण युवाओं को कितना आउटपुट अपने हाथ में आ रहा है, कि जो जो योजनाएं हमने चलाई इसका फायदा कितना हुआ और इसमें कितने युवा गढ़े गए हैं।
गुरुवे जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न।
हाँ,
जो 12 जनवरी को युवा दिवस तो मनाया ही जाता है,
हाँ,
इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी होता है, एक नया कार्यक्रम भी इस दिन अभी फिलहाल कुछ वर्षों से चालू हुआ है का। क्या विचार है,
किसका कार्यक्रम शुरू हुआ है?
सूर्य नमस्कार मध्यप्रदेश शासन के द्वारा।
देखिए
सूर्य नमस्कार,
दिनकर जी मैं विवेकवादी हूँ, बुद्धि प्रामाण्यवादी हूँ। देखिए ठीक है, आपने युवाओं के लिए सूर्य नमस्कार ये आपने शुरू किया होगा, ये योगा है और ये योगा का ही एक पार्ट है। ठीक है, सरकार ने किया है, वो सरकार का अपना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन क्या अकेले सूर्य नमस्कार करने से ही ये सारी बातें हो जाएगी क्या? और सूर्य नमस्कार का भी अभी क्या रहा है? आप देखिए, मैं तो एक पत्रकार हूँ, जब मैं किसी आयोजन के संकलन के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि सूर्य नमस्कार भी क्या हो गया है, बड़े बड़े मंचों पर अब आयोजनों तक सिमट के रह गया है। वास्तविक सूर्य नमस्कार क्या है? फिर सूर्य नमस्कार तो ऐसा है कि प्रतिदिन स्कूलों में सूर्य नमस्कार होना चाहिए, प्रतिदिन संगठनों में सूर्य नमस्कार होना चाहिए, और ये प्रतिदिन की बात है, किसी एक दिन की बात नहीं। हम गलत यही हो रहे हैं कि हम किसी भी विषय को, किसी भी मुद्दे को, किसी भी बात को मात्र एक दिन तक सिमट कर रख देते हैं और एक दिन के बाद में फिर हम साल भर के लिए उसको भूल जाते हैं। बेहतर ये होगा कि हम इस एक एक दिन की आयोजन को या एक दिन के विषय को, एक दिन के मुद्दे को हम एक संकल्पना के रूप में लें और हम पूरे वर्ष भर उस पर काम करें, और फिर अगले वर्ष जब ये विशेष दिवस आए या विशेष अवसर आए तब हम पहले तो समीक्षा करें कि हमने साल भर जो काम किया है वो कितना सही था, उसमें हमको किस तरह का परिणाम हमारे को मिला है, कितना परिणाम सामने आया, इसकी हम समीक्षा करें, तो ही ऐसे विशेष अवसर और विशेष दिवस और विशेष आयोजन सफल हो गए। नहीं तो वही होगा कि हम एक दिन के लिए युवा दिवस, युवा उत्सव मनाएंगे, कल से फिर जैसे थे युवा उत्सव फिर हम भूल जाएंगे, युवक क्या था हम ये भी भूल जाएंगे, और फिर अगले साल फिर उसी दिन पर फिर उठ के खड़े होंगे कि चलिए आज विवेकानंद जी की जयंती है, आइए युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस पूरे साल भर का होना चाहिए और ये विशेष अवसरों के मनाने के चलते ही मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमने विशेष अवसर हो या आयोजन हो, हमने इन विशेष दिवसों को सर पर लेकर नाचने की परंपराएं शुरू कर दी है, हमने उसको अपने भीतर कभी नहीं उतारा है, और जिस दिन हम इसको अपने भीतर में उतार देंगे उस दिन यह विशेष अवसर विशेष आयोजन सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवे जी कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच पर उपस्थित होकर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी। हम आपसे ये भी चाहेंगे कि अंत में अभी जो कोरोना की पिछली लहर है इसे बचने के लिए आप अपना तैक्षिक संस्थान के माध्यम से छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के लिए एक संदेश दे।
देखिए, मैं पहला संदेश तो यही दूंगा कि जो शासन की गाइडलाइन है कृपया उसका पूर्णतः पालन करें। दूसरी बात यह है कि हम अपनी भी एक गाइडलाइन बना लें, शासन की गाइडलाइन का तो पालन करेंगे ही, लेकिन हम अपनी भी एक गाइडलाइन बना लें कि हमने कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि शासन की गाइडलाइन अपनी जगह है, लेकिन हमने अपनी गाइडलाइन बनाना चाहिए, और कोरोना के लिए जितना हम सुरक्षित रह सके, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, और कृपया विवाह जैसे, मृत्यु जैसे या अन्य भी आयोजनों में कृपया कम ही शिरकत करें, ये मेरा अनुरोध है। बहुत आवश्यक हो वहीं जाए, अन्यथा अपने घर में सुरक्षित रहें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नमस्कार पाठक,
नमस्कार।